सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्तानम् नमो सिद्धानम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो गणे मङ्गलम् कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् समसमयसाराय स्वानुभूत्या चकासदे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमो सुदकेवलीमणिदं। यह कुंदकुंद आचार्य भगवान का समय सार है और उस समय सार की हम 17 और 18 नंबर की गाथा देख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि वहां पर एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया था कि जो धनार्थी जीव हैं वह धनार्थी जीव पहले राजा को अच्छी तरह से पहचान लेता है और उसको ठीक तरह से पहचानने के बाद जानने के बाद श्रद्धा करता है कि यही राजा है और इसी के कारण मेरा हित भी सधने वाला है, मुझे पैसे मिलने वाले हैं और वो पैसे की प्राप्ति के अर्थ ही ऐसा जो जीव है वह उसकी सेवा करता है, उसका अनुचरण करता है, हाँ, और राजा को किसी भी प्रकार से वह खुश करके अपना बहुत ही पुरुषार्थ पूर्वक उसकी सेवा करके अपना प्रयोजन साध्य कर लेता। इसी तरह यहाँ पर कहते हैं कि जो मोक्षार्थी जीव है वह पहले में पहले राजा को पहचानता है। कौन सा राजा? तो कहते हैं जीव राजा को पहचानता है, बहुत ही उद्यम करके उसको जान लेता है, श्रद्धा करता है और उसी में एकाग्र हो जाता है और फिर वह एकाग्रता ही उसे मोक्ष तक पहुंचाती है। इस तरह वह अपना भी प्रयोजन सिद्ध कर लेता है, ऐसी बात हमने देखी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ क्रमांक 27 पर हम आए थे, हो ना? दृष्टांतमा, ये थर्ड लाइन के बाद दृष्टांतमा, पहलो धनार्थी छे तो आ मोक्षार्थी छे। अभी पहले तो दृष्टांत कल हमने देख लिया था, अभी यहाँ पर सिद्धांत घटाते हैं। एने पूर्णानंदनी प्राप्ति सिवाय बीजू काई प्रयोजन नथी। तो अभी हमारा भी प्रयोजन क्या होना चाहिए कि पूर्ण आनंद स्वरूप ऐसा जो मेरा स्वभाव है उसको जानकर पहचान कर उसी में एकाग्रता करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं मोक्षार्थी छे एने पूर्णानंदनी प्राप्ति सिवाय बीजू काई प्रयोजन नथी, एने पुण्यनी इच्छा नथी। क्या कहा? एने पुण्यनी इच्छा नथी, स्वर्गनी के कोई मोटी पदवी मळे एनी इच्छा नथी। एक ज पदवी मोक्षार्थी माटे छे, एक मोक्षनी, ये मोक्ष की भी पदवी, पदवी यानी जैसे अवस्था, ये मोक्षनी। दृष्टांतमां जेम पेलो एक धननो ज अर्थी छे एम आ एकलो मोक्षनो ज अर्थी छे। अनंत अनंत आनंदनी पर्यायमां प्राप्ति थाय ए मोक्ष। नियमसारमां आवे छे के आत्माना महा आनंदनो लाभ ते मोक्ष, बस ए मोक्ष जेनु प्रयोजन छे ते मोक्षार्थी छे। શ્રીમદે આત્મસિદ્ધિમાં કહ્યું છે ને કે મોક્ષ કયોની જ શુદ્ધતા તે પામે તે પંથ સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ. ક્યાં સમજા રહે હૈ? દેખો દેખો, યે આત્મસિદ્ધિ મેં બાત અપને આને વાલી હૈ, લેકિન યહાં પર ભી ઉન્હોને બતા દિયા બહોત અચ્છી તરહ સે. ક્યા કહેતે હૈ યે મોક્ષ? યાને ક્યા હૈ કે નિજ શુદ્ધિ કી પ્રાપ્તિ કરના. વો કૈસી? પરિપૂર્ણ પને. શુદ્ધિ તો ચૌથે ગુણ સ્થાન મેં ભી પ્રાપ્ત હોતી, લેકિન પરિપૂર્ણ શુદ્ધિ ઉસે પ્રાપ્ત નહીં હુઈ હૈ. ઇસલિયે કહેતે હૈ મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા, ઓર ઉસકો જો પ્રાપ્ત કરતા હૈ વહી પંથ હૈ. ઓર નિજ શુદ્ધતા કી પ્રાપ્તિ નહીં કરે ઓર હમારા પંથ ચાલુ હો ગયા. ખ્યાલ મેં આયા? તો યહાં તો બાર બાર સ્વામીજી બતા દેતે આ જૈન ધર્મ એટલે કંઈ વાડો નથી, પંથ નથી, સંપ્રદાય નથી, આ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. તો વસ્તુનું સ્વરૂપ તો યહાં પર મેં બતાતે કે વસ્તુ એટલે નિજ આત્મા અને એની શુદ્ધતા તે મોક્ષ. તો નિજ શુદ્ધિ જે પરિપૂર્ણતયા પ્રકટ થાય મારામાં તે કેમ થાય? તો કે પોતામાં એકાગ્ર થતા એ થાય, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. તો કહેતે હૈ મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા તે પામે તે પંથ. વહ શુદ્ધતા જિસ માર્ગ સે પ્રાપ્ત હોગી વહી સચ્ચા પંથ યાને માર્ગ હૈ. સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ. મેં ઇસમેં સંક્ષેપ મેં યે નિર્ગ્રંથ માર્ગ જો હૈ, નિર્ગ્રંથ માર્ગ કા અર્થ યે હૈ કે નિર્ગ્રંથ યાને જિસમેં કોઈ ભી કિસી ભી પ્રકાર કી રાગ કી ગ્રંથિ નહીં હૈ, કિસી ભી પ્રકાર કી આસક્તિ જિસમેં નહીં હૈ. નિર્ગ્રંથ એસા જો માર્ગ હૈ વહ માર્ગ મેને આપકો સંક્ષેપ મેં બતા દિયા, એસા કહે રહ્યા. શ્રીમદ રાજચંદ્રણ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં પહેલા છંદમાં એમ કહ્યું કે જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદનમું શ્રી ગુરુ ભગવંત. યે બાત તો આપકો સમજાને કી ગરજ ને બહોત હમને સમજ લી હૈ, ઓર ભી સમજેંગે, ઓર ભી સમજેંગે આગે જાકે. અભી તો ક્યાં એક દો દિન મેં આને વાલા હૈ સમજને કા. ક્યા કહે? આઈ જે પદ સમજાય મું એટલે કે જે આત્મ પદ મને સમજાયું તે પદને એટલે તે સ્વરૂપને હું નમું છું એમ કહે છે. અભી યહાં નમને કે લીએ કહાં કોણ રહી ગયા? અભી તો કહેતે મેં અકેલા હી, ઓર હમ ઉસકો તો છોડ દેતે, બાકી દુનિયા ભર કે જાકો નમસ્કાર કરતે હૈ, પદ મેં નમતે હૈ. ઓર યહાં વહાં નહીં જાના હો તો આપણે ઘર મેં ફટાફટ લગા દેતે હૈ. ક્યા? તો કહેતે હૈ જે આત્મપદ મને સમજાયું તે પદને એટલે સ્વરૂપને હું નમું છું એમ કહે છે. જેવું સ્વરૂપ છે તે પેલું સમજાયું તે પદને હું નમું છું. વળી સોરમા વર્ષે બહુ પુણ્ય કેરા એ કાવ્યમાં એમ કહ્યું છે કે એને શ્રીમદજીને ઉનકે ઉમ્ર કી 16 વર્ષ મેં જબ 16 વર્ષ કી થી તબ યહ કાવ્ય રચના કી થી. કૌન સી? હું કોણ છું, ક્યાં થી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું, કરું કો ના સંબંધે વળગના છે, રાખું કે એ પરિહરું. એ ના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા, તે સર્વ આત્મિક જ્ઞાન ના સિદ્ધાંત તત્વ અનુભવ્યા. અભી જિસકે સાથ મેં એકમેક હો ગયા હું તો અભી કિસકો રખું ઓર કિસકો છોડું? તો કહેતે હૈ રાખું કે પરિહરું, કે જિસકે સાથ મેં ક્યા બોલે લપક કે ખડા હું, ક્યા વહ મેરા હૈ? તો મેને હું કોણ છું યે નહીં જાણા, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું યે બાત જાની નહીં હૈ. ઇસલિયે શરીર કે સાથ મેરા ઇતના એકત્વ સંબંધ હૈ, શરીર કે કારણ સે મેરે બાલ બચ્ચે જો કુછ હૈ, પરિજન સ્વજન વગેરે વગેરે જો કુછ હૈ, યે સબ જો હૈ ક્યા ઇનકો મેં રખું યા છોડું? इस तरह से वो सोचते हैं। ए ना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करिया। अब शांत मन से मुझे इसका विचार करने का वक्त आ गया है। बहुत दिन से सुन 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 तो लिया, लेकिन कभी ऐसा सोचा तक नहीं, ऐसा बता रहे। क्या कह रहे? ए ना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करिया, तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। ये सिद्धांत तत्व यानी अपना जो स्वरूप है उसका अनुभवन कब होगा कि मैं जिसके साथ चिपक गया हूँ, लपट गया हूँ, वह मेरे है या नहीं, ये समझकर जब मैंने शांतता पूर्वक विवेक पूर्वक अगर विचार किया और अपने स्वरूप का चिंतन मनन और निर्णय किया, तो ये बात होने वाली है। ख्याल में? अभी जो हमने यहाँ समयसार में देखा वो यही बात थी, अरस वगैरह वगैरह जो सारी बातें देखी, जो सात बोल हमने देखे, वो तो है, लेकिन मैं तो चेतन गुणपना हूँ, चेतना गुणपना मेरे में है, चेतनत्व मेरे में है, और वही हमने नहीं पहचाना है, तो बाकी सबके साथ एकत्व बुद्धि की है और पूरे दिन हो हा चालू है। ख्याल में? यही तो ये भी बता रहे। तो कहते हैं, आई अमृत चंद्राचार्य महाराज दाखलो आपने कहे छे के प्रथम तो आत्मा ने जानवो। प्रथम में प्रथम क्या करना? सब लोग कहते हैं हमें तो आत्मानुभव करना है, सब पहले में पहले क्या करना, कैसा बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी कहाँ रखना, नहीं नहीं मतलब वो उत्तर की दिशा में मुंह करना क्या, पूरब 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 दिशा में कैसा, और दिन में कितना बजे, 5:01 क्या, सुबह कितना वो संधि क्या काल रहता है, उस समय कितने बजे सूरज उगता है तुम्हारे गांव में? अरे प्रभु ये तुझे क्यों आवश्यक लग रहा है? तू यहाँ तो कह रहे प्रथम प्रथम तो आत्मा ने जानवो, तो आप ही कह दो साहब आत्मा कैसा है, तो दूसरे के कहने से ये जाना नहीं जाएगा, स्वयं को निर्णय करना पड़ेगा। कहते हैं क्योंकि जानवो, जानवो एटले स्व संवेदन ज्ञान थी एने जानवो। ये तो बहुत आगे की बात बता रहे, हमें तो शास्त्र के माध्यम से जानने में तकलीफ होती है, तो वो जानना कब जानना कहलाएंगे? तो कहते हैं स्व संवेदन ज्ञान थी एने जानवो, ए जानवो। और हमने तो अभी तक देखा था, नहीं नहीं हम तो राइट पाथ पर है, हो क्या हम तो शास्त्र के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, उपदेश कुंदकुंदा आचार्य के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से हम ये सारा जान रहे हैं। हमने कम से कम आत्मा के बारे में तो जाना, अरे आत्मा के बारे में जाना, आत्मा को नहीं जाना। तो ये जानना कब होगा कि स्व संवेदन ज्ञान थी इन्हें जानवो, शास्त्र थी जानवो, धारणा थी जानवो, के गुरुए जणायवो ते थी जानवो एम नथी। अभी इससे स्पष्टता कितनी चाहिए, तो फिर हम गुरु करें क्या नहीं करें, ऐसी बात निकल दी। पण शुद्ध ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ने पर्याय मा ज्ञेय बतावता जे ज्ञान थाय, ए स्व संवेदन ज्ञान थी आत्मा ने जानो। क्या कहते हैं देखो, क्या कह रहे हैं? शुद्ध ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ने पर्याय मा ज्ञेय बनावता, यानी हमारी जो जानन रूप जो पर्याय है वह पर्याय क्या कर रही है, जान रही है। तो किसको जान रही, तो किसी न किसी गेय को जान रही है। तो उस गेय में स्व गेय जब आ जाए, कैसा है स्व गेय? तो कहते शुद्ध ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा एने पर्याय मा ज्ञेय बनावता जे ज्ञान थाय, ए स्व संवेदन ज्ञान थी आत्मा ने जानवो, त्यारे आत्मा ने जाण्यो एम कहेवाय। कितनी सीधी और सरल बात है, और हम इतनी सी छोटी सी बात, नहीं नहीं ये कोई गड़बड़ कर रहे हैं। तो मुझको एक कहानी याद आ गई सर, आज आपको देख के याद आ गई, पहले इन लोगों को बहुत बार बताई थी, आज आपको बताएंगे। क्या बात हुई? एक भट्ट, भट्ट समझते हैं आप लोग, एक ब्राह्मण था, उसको आत्मा का अनुभव करता हो गया। उनके गांव में एक ऐसा एक गुरु था, उनके पास गया, महाराज बोलो साहब क्या है, तो मुझे आत्मा का अनुभव करना है, तो मैं क्या करूं? बोले अरे तू स्वयं ही आत्मा है, कहां तुझे ढूंढना है, इसको कोई अक्कल नहीं दिखते हैं, चलो जाने दो। वहां से दूसरे 12 कोस दूर जाके एक कोई बहुत बड़ा पंडित था यार, कोई ऐसा साधु था, उसके पास गया, बोलो साहब मैं फला फला गांव से आया हूँ, आपका नाम बहुत सुना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, तो मुझे आत्मा को जानना है। तो हमने हमारे गांव के पंडित को पूछा, तो उसने कहा ऐसा ऐसा कहा, ऐसा ठहर मैं तुझे आत्मा बताऊंगा। हाँ साहब बोलो, आप जो बोलोगे वो करोगे? हाँ हाँ, क्या करना है? तो कहते 12 साल मेरी सेवा कर। तो रोजाना उसके घर में झाड़ू मारे, गाय का दूध निकाले, सब उसको ये जो भी वो काम होता है फोकट में, वो सारा कर डाला। 12 साल वो गिनते बैठा। फिर 12 साल होते ही उसने कहा, महाराज आप बताने वाले थे, आज बिल्कुल 12 साल पूरे हो गए। बोलते हाँ बहुत अच्छा, मेरे को तो ऐसा लायक ही शिष्य चाहिए कि जो बराबर गिनती रखता है। तो ऐसा कर, मेरे से भी सहज रीति से बताने वाला मेरा गुरु फला फला गांव में है, तो वहां जाना, वो तुझे समझा देगा। तो ठीक है साहब, मैं तो अच्छा समझा, अरे बहुत बढ़िया। तो उसके पास गया, तो उसने कहा क्यों भाई, क्या आया, क्यों आए? तो उसने सारी हिस्ट्री बताई। ओहो बहुत अच्छा है, तुम्हें तो इतनी जानकारी चाहिए, तो हम आपसे खुश हैं, तो आप काम करो, मेरी सेवा करो, जरूर जरूर 12 साल में तुझे बता दूंगा। फिर वही 12 साल निकल गए। फिर बोला अभी हमारा, बोलते मेरे गुरु के पास जाना, और 12 साल वहां गुजारे। फिर बोले क्या है? बोलते तू ही मूर्ख, तू ही स्वयं आत्मा है। ये क्या बात करें, ये तो हमको उसी ने बताया था, ख्याल में है? तो ये कोई जो बात बताई जाती है, इस पर इसका रंच मात्र भी विश्वास नहीं है, ख्याल में है? तो यहां वही बता रहे हैं कि स्व संवेदन ज्ञान थी आत्मा ने जानवो, ऐसा आपने पता नहीं जानो, एक भी जानो, स्व संवेदन ज्ञान थी, नहीं नहीं कुछ तो भी उसका उपाय। स्व संवेदन यानी क्या? स्व संवेदन करना यानी क्या? अरे स्व संवेदन यानी अपने ही आत्मा को अपन स्वयं जानना। लेकिन जानना यानी क्या करने का? जानना यानी क्या? ऐसा मतलब उसके मन में ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं कि एकाग्र हो जाने का, लेकिन एकाग्र होने के लिए क्या करने का? आप कुछ भी कहो तो उसके ऊपर उसके प्रश्न तैयार रहते हैं। तो इस तरह से उसने आज तक अनेक बार यह बात सुनी होते हुए भी आज तक वो सुनकर भी नहीं सुनी जैसे हो गई है। इसलिए कहते हैं स्व संवेदन ज्ञान थी आत्मा ने जानवो, त्यारे आत्मा ने जाण्यो एम कहेवाय। ज्ञाता द्रव्य नु पर्याय मां ज्ञान थाय, त्या द्रव्य पर्याय मां आवे नहीं। क्या कहा? देखो ये बिल्कुल बात समझने जैसी है। कहते हैं मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है? तो ज्ञाता और दृष्टा, अभी दृष्टा को जरा हटा दो, मैं ज्ञाता हूं। तो ज्ञाता द्रव्य नु पर्याय मां ज्ञान थाय, ये जानन 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 रूप ज्ञान की जो पर्याय है, वह एक समय की पर्याय में ज्ञाता द्रव्य जो है एनु ज्ञान थाय, त्या द्रव्य पर्याय मां आवे नहीं। एटले देखो देखो नलिन भाई, आप सुबह कितना बजे उठते हैं? 5 बजे। तो 5 बजे उठते ही पहले आप क्या करते हो? बेसिन पे जाके ब्रशिंग, पहले जो कुछ करते थे ना ब्रशिंग कर, तब वो बेसिन के ऊपर एक आईना लगाया ना आपके घर में, मैं देखा हूं। तो उसमें क्या करते हो तुम? आईने में देखते हो। तो क्या तुम आईने में घुस गए हो या आईना तुम्हारे में घुस गया है? लेकिन आईने में प्रतिबिंब आता है। वैसे ये जानन रूप जो पर्याय है वह किसको देख रही? त्रिकाली ज्ञाता स्वभाव को। लेकिन वह ज्ञाता स्वभाव पर्याय में आया नहीं है, ख्याल में आई बात? यानि स्वभाव यानी जो स्वरूप त्रिकाली जो द्रव्य वो अपनी जगह में है और पर्याय भी अपनी जगह है। पहले समझना कोई द्रव्य और पर्याय अलग अलग ठिकाने पे है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब हम उसका भेद करके समझते हैं तो यहाँ लिखते हैं कि पर्ण यानी क्या कहा ज्ञाता द्रव्यनु पर्यायमा ज्ञान थाय, ये बात समझ में आई। त्या द्रव्य पर्यायमा आवे नहीं पण पर्यायमा ज्ञाता द्रव्यनु पूरु ज्ञान थाय। नहीं समझ में हमारे उस रूम में एक बहुत ऊपर से नीचे तक आईना है हा? उस आईने में सर से लेके पैर तक पूरा इमेज दिखता है हा? तब जब आप आईने के सामने जाके खड़ी हो जाए तो आपका पूरा पूरा जो कुछ है वो प्रतिबिंब उसमें दिखता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप उस आईने में गई है या आईना आप में आया है, दोनों नहीं है बात। यहाँ तो हम इतना ही लेना है कि आप आईने में गई नहीं हो, मैं स्वयं पूर्ण द्रव्य हूँ। वो आईने की जगह वो एक समय की जो जानन रूप पर्याय है उसको लेना। तो जानन रूप पर्याय अन्य को जानते 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 अभी स्व को जान रही है, तो उस पर्याय में मेरे स्वरूप जो त्रिकाल स्वभाव है उसका प्रतिबिंब आया। प्रतिबिंब आया, मैं वहीं के वहीं रहा, त्रिकाली द्रव्य तो वहीं के वहीं है, उसका प्रतिबिंब आया। ख्याल में आई बात? अब क्या बताते देखो, फिर से पढ़ता हूँ नीचे से चौथी लाइन। ज्ञाता द्रव्यनु पर्यायमा ज्ञान था, ये द्रव्य कैसा है? ज्ञानन जानन स्वभावी है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ज्ञायक भाव जिसको कहा है वो ज्ञाता। क्या द्रव्य पर्याय में आवे नहीं, तो द्रव्य तो द्रव्य ने ठिकाने चाहिए, पर्याय तो पर्याय ठिकाने चाहिए। देखो पर्याय तो कितने समय की है, एक समय की, और जो त्रिकाली द्रव्य है वह त्रिकाल रहने वाला है। अगर वो पर्याय में आ जाए ऐसा हम मानते एक में हो जाए तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा एक समय के पर्याय के साथ, इसलिए वो पर्याय में तो द्रव्य आया मतलब जनाया लेकिन द्रव्य पूरा नहीं आया। अब क्या कहते हैं, पन पर्याय मा ज्ञाता द्रव्य नु पूरु ज्ञान थाय, द्रव्य ने इनी अंदर नहीं आवे पन एनु पूरु ज्ञान थाय, जेवु छे तेवु परिपूर्ण ज्ञान पर्याय मा थाय। आत्मा ने जानवो एनो अर्थ एम छे के एक समय नी ज्ञान पर्याय मा आ ज्ञेय पूर्ण अखंड ध्रुव शुद्ध प्रभु जेवो छे तेवो परिपूर्ण जनाय, त्यारे आत्मा ने जाण्यो एम कहेवाय। देखो यहां तो कह रहे हैं कि जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव पर्याय में जानने में आया, जैसा परिपूर्ण स्वभाव है वैसा जाना, तो कहते हैं कि वो आत्मा ने उसने आत्मा को उसने जाना है। अभी देखो ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव होगा वह भी आत्मा जैसा है वैसा परिपूर्ण जानता है, लेकिन उसका जानना और केवल ज्ञानी का जानना क्वालिटी वाइज देखा जाए तो एक ही है, नहीं तो इसने थोड़ा बहुत कम जाना है और उन्होंने बराबर परफेक्ट जाना है ऐसा नहीं होगा। जानने में कोई अंतर नहीं है, वो स्थिरता जो है उसमें इनकी अधिक होती थी इसलिए उनकी केवल ज्ञान की प्राप्ति है। अभी इसके तो मान लीजिए अभी क्षयक्षमिक ज्ञान है तो इसलिए क्या कहा दिव्याबेन, अभी समझ में आई बात? हाँ कहाँ गए? फिर से देखो नीचे से दूसरी लाइन थर्ड में लिखा है, आत्मा ने जानवो एनो अर्थ एम छे के एक समय नी ज्ञान पर्याय मा आज्ञेय, आज्ञेय एटले आ स्वज्ञेय पूर्ण अखंड ध्रुव शुद्ध प्रभु जेवो छे। ये तो त्रिकाली द्रव्य का वर्णन किया है, कैसा है वह? वह कहते हैं पूर्ण है स्वरूप उसका, अखंड है, ध्रुव है, शुद्ध है और प्रभुता सहित है। ए वो जे वो द्रचे ते वो परिपूर्ण जनाए, अभी जब जानने रूप जो क्रिया हो रही है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव को तब जानने में ऐसे भेद नहीं होंगे, ये इन अनंत गुणों का अभेद अखंड ऐसा जो कुछ आत्मा ज्ञायक स्वभाव है वो उसके जानने में आएगा। તો ત્યારે પરિપૂર્ણ જણાય ત્યારે આત્માને જાણ્યો એમ કહેવાય. આવી વાત છે ભાઈ, દુનિયા અનેક પ્રકારે વિચિત્ર છે, તેની સાથે મેળ કરવા જઈશ તો મેળ નહીં ખાય. ક્યા કહે રે, દેખો કિતના બડા યુનિવર્સલ ટ્રુથ બતાયા હૈ કે દુનિયા અનેક પ્રકારે વિચિત્ર છે. તો કુછ ભી બતાયેગી કહેતે, તેની સાથે મેળ કરવા જઈશ તો મેળ નહીં ખાય. ક્યુંકિ યહ જો કોઈ જિનેન્દ્ર ભગવાન ને બતાયા હુઆ જો વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ વો લૌકિક જનો કી જો માન્યતા હૈ બિલકુલ ઉસસે વિરુદ્ધ હૈ, એટલે દુનિયા સાથે મેળ નહીં ખાય એસા બતા દિયા. તો હમ ના દુનિયા કે સાથ અપન અપના મિલાન કરના ઓર ના કે દુનિયા કો અપને સાથ મિલાન કરને કે લિયે મજબૂર કરને કી કોશિશ કરના. તો જીસ સમય જીસ જીવ કી જૈસી પરિણતિ હોની હૈ વૈસી હી હોગી. કભી કભી રાગ આતા હૈ, વો રાગ કો ભી શાંત કરના, દબાને સે કુછ નહીં હોગા. હા બોલો બોલો બોલો.
મેને કહા રાગ કો ભી જાનો,
જાનન સ્વભાવ હૈ ના, તો તુમે રાગ આયા કે કિસી કો હમ સુધાર દેવે તો રાગ ભી આયા ઉસે જાનો એસા કહે દે, ક્યુંકે સ્વભાવ હી જાનન દેખા ને. આત્મા એ અખંડ વસ્તુ અને જાણવું એ પર્યાય. ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય મુનિ સંત એની ટીકા કરે છે. એ ગાથામાં ભરેલા સામાન્ય ભાવને વિશેષ સ્પષ્ટ કરે છે. માનસો નથી કહેતા કે તું મારી ટીકા કરે છે, એટલે કે તું કેવો છે એની ટીકા કહેતા વિશેષ સ્પષ્ટતા કરે છે. એમ અહીં આત્મા કેવો છે એની ટીકા કરી છે. ભગવાનના દિવ્ય ધ્વનિની સંતોએ ટીકા કરી છે. અહીં ટીકામાં પ્રથમ એટલે સૌ પહેલા આત્મા જાણવો એમ લીધું છે. અભી યહાં કિસકો નમના, કિસકો નમસ્કાર કરના, કિસકે આરતી ઉતારના, કિસકે ગુણગાન ગાના, કોઈ બાત હૈ ક્યા? અરે યહાં તો સાક્ષાત 24 તીર્થંકર કા ભી નામ નહીં લિયા હૈ. ઓર તીર્થંકર કો છોડ કે હમ કિસી વ્યક્તિ વિશેષ કે પીછે દોડે તો વો તો રાગ હૈ ભાઈ, વિતરાગતા નહીં હોગી. અરે યહાં સાક્ષાત પંચ પરમેશ્ઠી કા ભી તુમ ભક્તિ પૂજા અગર કરોગે વો ભી તો રાગ હૈ. તો યહાં પહેલે મેં પહેલે ક્યા કરના ચાહીએ, તો સૌ પહેલા ક્યા લિખા, પ્રથમ એટલે સૌ પહેલા, સૌ પહેલા એને 100 પહેલા નહીં, સબસે પ્રથમ, એ ગુજરાતી હૈ ને, સૌ પહેલા એને 100 પહેલા ને, વો સો રહેતા ને, એ ડબલ ડબલ માત્ર. હા આત્મા જાણવો એમ લીધું છે. નવતત્વને જાણવા કે રાગને જાણવો એ અહીં ન લીધું. એકને જાણે તે સર્વને જાણે છે. એ કેસા, એકને જાણે તે સર્વને જાણે છે. એ વાત બહુ વાર આવી હતી. હા બોલો બોલો. અરે કિસી મેં ભી આવી હો, કેસા ઇસકા એક્સપ્લેનેશન કિયા થા હમને. હા બોલો. એ વાત બરાબર, એક આત્માને જાણતા બધા બધું જણાય. એ ભી વહી વાત લિખી હૈ કે ક્યા લિખી હૈ કે એકને જાણે તે સર્વને જાણે છે. ઇસ બાત કી સિદ્ધિ કૈસી કરેંગે હમ, યા તો ઉદાહરણ દો યા તો કુછ સમજાઓ. હા કોણ બતાયેગા, ઇન્દુબેન આપ બતાયેગી? કેવલ જ્ઞાન મેં જબ સોકો જાનતા હૈ તબ સુરે સારે પૂરે લુકા લોક કો જાનતા હૈ ઓર જો સમ્યક દ્રષ્ટિ હોતા હૈ વો ક્યા હોતા હૈ ઉસકા. હા તો યહાં જો લિખા હૈ ના કે એક ને જાણે તે સર્વ ને જાણે છે, ઇસ બાત કી સિદ્ધિ આપકો કરની હૈ. તો યે તો આપને કેવલ જ્ઞાન મેં લગાયા, તો ઇસકા અર્થ હો ગયા કે ચતુર્થ ગુણ સ્થાન વર્તી નહીં જાનતા હૈ, વો ભી તો એક કો જાનતા હૈ. मिली भाई आप बताएंगे। देखो देखो अभी कोई बताना चाहते हैं तो बोलो, आप बता रहे हैं? अच्छा सौभाग चंद जी, तो इससे सबको जाना जाता है, ये बात कैसे आप प्रूव करेंगे? देखो देखो अभी इसने किसको जाना, तो कहते हैं स्व को जाना, एक को जाना। तो एक का स्वभाव कैसा है कि वह स्वतंत्र है, अपना अपना परिणमन कर सकता है, दूसरे किसी के परिणमन की उसको गरज नहीं है, परिणमाने की गरज नहीं है, ऐसा वह स्व को जाने। तो वह जब स्व को मैं स्वतंत्र हूं ऐसा जानता है तो पर भी ऐसे ही ऐसा जानेगा कि नहीं? अभी जैसा आपने बताया कि एक स्व को जाना, तो स्व को स्वरूप से जाना और पर को पर रूप से जाना, क्योंकि पर को भी स्वरूप से जाने और स्व को भी स्वरूप से जाने, तो वो तो स्व को जानना नहीं हुआ, ये स्व सहित पर को अपना जाना जैसे। तो जैसा मैंने इसके लिए आपको बहुत उदाहरण दिए थे कि हम चावल पकाते हैं तो एक शीत उसका मतलब एक अक्षत निकाल के देखते हैं तो सीज गया हो तो बाकी सब सीज गए, और भी बहुत उदाहरण दिए थे मैंने तो। हाँ जी, हाँ गेहूँ लेने गए, हाँ आप गए थे, अच्छा बोलो, हाँ गेहूँ खरीदते हैं, शक्कर खरीदते हैं, जो भी है तो थोड़ा सा हम देखते हैं सैंपल, उस पर से पूरे का भरोसा कर लेते हैं। वैसे यहाँ एक आत्मा को जाना तो अनंत आत्माएं ऐसे ही है, अनंत परद्रव्य भी ऐसे ही है, ऐसे कैसे कैसे मेरे जैसे वे भी स्वतंत्र है, उनमें भी उत्पाद वे ध्रुवत्व है, उनमें भी अपने अपने परिणमन करने की योग्यता है, कोई दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सबको जाना जाता है। और अभी आपने बताया था ये बात समय प्रवचन सार में भी आई थी, कौन सी गाथा में आई थी, कोई बात नहीं चलो। हाँ अभी चालू विषय तो समय सार में और प्रवचन सार में का ही होगा ना। हाँ अच्छा है, क्या कहते देखो, ये अखंड वस्तु नहीं जाने, अभी कहाँ आए थे हम? हाँ 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 आत्मा जानवा एम लीधु छे, नव तत्व ने जानवा के राग ने जानवा, ये अहियाँ चीज नहीं लीधी। एक ने जाने ते सर्व ने जाने छे, ज्ञाननी पर्याय मा आखो आत्मा ज्ञेयपणे जणाय, अने सौ प्रथम आज करवानू छे। तो क्या हम हमारे बाल बच्चों की शादी नहीं करें, उनको नहीं सिखावे? ऐसा लोग कड़क होकर पूछते हैं। हाँ तो तूने किसकी किसकी शादी की पहले ये तो नक्की कर, ख्याल में आया ना? हम तो जबरदस्ती अपने माथे ओढ़ लेते कि मैंने ये किया मैंने ये किया। अरे तेरे साथ में रहने वाला एक क्षेत्र में जो शरीर है उसका भी तू करता नहीं है, और कहाँ से वो जवाई ढूंढ के लाया, कहाँ से तू, यानी ये कैसी इसकी मीठी गलत मान्यता है, ख्याल में है? ये इतना रागी द्वेषी जीव है ना, तो पर का परिणमन करने में और कराने में उसमें इसकी इतनी मजा आती है कि उससे तू नहीं कर सकता ऐसा कहने से वो भड़क जाता है, ख्याल में है? छठी गाथा में कहूं छे के जे न्यायक भाव स्वभाव छे, ए शुभा शुभ भावना स्वभावे थतो नथी। कैसे स्वभावे थतो नथी? शुभ अने अशुभ तो शादी कराना शुभ परिणाम होगा क्या? हाँ सर, क्या आपका क्या कहना है? किसी की शादी कराना अपने बच्चे की, जाने दो ना, लंबा क्यों जाए, वो शुभ भाव है या अशुभ भाव है मम्मी बताएगी? अशुभ भाव कहते हैं। आप क्या कहते हैं सब? ये तो बड़ा कार्य है ना, किसकी जिंदगी बन जाए। हाँ देखो देखो पहले मुझे ये बताओ, ये तो बिल्कुल अशुभ कार्य है वो, क्यों आप कहेंगे क्यों? तो मैं थोड़ी कड़क बात बोलता हूं, अल्टीमेटम, उसके आगे पीछे जाने की गरज नहीं है। एक बात समझ लो, देखो ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है या अब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है? अब्रह्मचर्य। अच्छा तो परिग्रह श्रेष्ठ है या अपरिग्रह? तू आज ठिकाने पे नहीं है, तारदेव पहुंच गए। ख्याल में आया? तो हम किसकी अनुमोदना कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की या अब्रह्मचर्य की? देखो भाई, ये बात पहले दिल में उतरने के लिए बहुत कठिन है, पर वास्तविकता ये है। हम जानते हैं जो पंचम गुणस्थानवर्ती, जो अनवृतधारी, ऐसे जो श्रावक होते हैं जो सात्वी प्रतिमा धारण करते हैं, यानी ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, तो ना तो वो किसी की शादी में जाते हैं और ना किसी की शादी का नक्की कराते हैं कि तुम्हारा लड़का तुम्हारी लड़की कर डालो शादी। ये तो पाप की अनुमोदना है। ख्याल में? और ऐसे महंत फिरते हैं कि मैंने इतना ऐसा किया ना वैसा किया। तो पहले मूल में तो बात तो समझो भाई कि वो क्या है। इसलिए यहां क्या बताते, देखो यहां तो ये समझा रहे हैं कि छठी गाता मां कहूं के जे न्यायक भाव स्वभाव भाव छे ए शुभा शुभ भावना स्वभावे थतो नथी। अशुभ भाव भी नहीं और शुभ भाव भी नहीं। ख्याल में आया? ई रूपे थतो नथी। कौन? तो न्यायक स्वभाव, जे त्रिकाणी स्वभाव छे, जे मारो स्वभाव भाव छे, ए कोई दिवस शुभ रूपे परिणम तो नथी के अशुभ रूपे परिणम थी। कौन? स्वभाव भाव। तो अहिया तो थाय छे ने भाई, पर ए स्वभाव नथी, ए विभाव छे बाबू। ख्याल में आया? नहीं, तारा मूर्खाई थी आ थाय छे। पहला ई तो समझ के तारा कारणे थाय छे, बीजो कोई तने एवी रीते परिणाम आवी दे एम नथी। शुं कह्युं? केम के शुभ के अशुभ भावो अचेतन छे। अचेतन केम छे? केम के जे शुभ भाव छे अथवा के अशुभ भाव छे, ना के पोताने जाने छे ने परणे जाने छे, एटले ए अचेतन छे। ए चैतन्य रस अचेतनपणे केम थाय? ए चैतन्य रस यानी ये जो त्रिकाली स्वभाव भाव है, वह अचेतनपने अने शुभाशुभ भावपने केम थाय? न्यायक भाव एक रूप चैतन्य वस्तु छे, यानी न्यायक भाव जो है वह हमेशा त्रिकाली एक जैसी ही रहेगी, वह उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी, कभी भी उसमें अशुद्धता का प्रवेश नहीं होगा। तो कहते न्यायक भाव एक रूप चैतन्य वस्तु छे, ज्ञाता दर्शन स्वभावी एवी वस्तु छे। आवो जे न्यायक भाव आत्मा तेने एने प्रथम जाणवो एम आचार्य कहे छे। अभी हमारे लिए तो जाणवो यानी पहला उसका स्वरूप तो जाणो, पछी अनुभव करो, वांदो नहीं। क्योंकि निर्णय करने के लिए हमें पहले तो स्वरूप को जानना ही पड़ेगा। इसलिए कहते आचार्य कहे छे ये प्रथम जाणवो। अभी आगे आचार्योए थोड़ू लख्यू घणू करीने जाणजो। ये क्या होता है? थोड़ू लख्यू घणी घणू करीने जाणजो। पहले खत लिखते थे, आजकल ईमेल फीमेल नहीं था उस जमाने में, खाली पत्र लिखते थे क्या ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और इतना थोड़ू लखू घणू जाणजो, यानी उसमें सब आप समझ लेना। एक दफे क्या हुआ, जो घटित तो बात है वो बताता हूँ आपको। पंडित हुकमचंद जी भारिल, उनकी बात है वो, उन्होंने बताई हुई। वो एक छोटे से गांव में रहते थे और पढ़ाई वढ़ाई के लिए यहाँ वहाँ गए, और वो न्याय तीर्थ पढ़कर आए तो सब लोगों ने उनका बहुत बड़ा सत्कार किया कि वाह वाह, हमारे गांव का बेटा इतना बढ़िया हो गया, ये है वो है। तो कुछ काम की वजह से, समझ लो कुछ काम की वजह से, उनके पिताजी उनके गांव से कहीं बाहर गए, तो इतने में एक खत आया उनके गांव के किसी व्यक्ति को, तो उन्होंने बोला अरे ये तो पंडित है अपने गांव का, ये तो पढ़ना जानता है, उसको जाके पढ़वाएं। तो उन्होंने बोला ये फला फला इसको इसका ऐसा ऐसा है, यहाँ ये है वो है, इसको नमस्कार वगैरह वगैरह, और आपका फला फला। अरे इसको पढ़ने नहीं आता है क्या, तुम इतना सीख क्या क्या फायदा, तुम पंडित होके आया क्या, तेरे को पढ़ने को नहीं आता ये सब। अरे भाई भाई उसमें जो लिखा है मैंने, तुम बोलो मत तुम काय का पंडित है, ये तुम्हारे पिता ने तो बहुत खर्चा करके नुकसान कर लिया। ऐसा करते करते शाम हो गई और पिताजी आते ही इनके गांव गांव के सारे लोग उनके पास पहुंचे कि ये देखो ये खत आया है और ये तुम्हारा लड़का कैसा पढ़ के आया, उसको कुछ समझता नहीं कुछ नहीं, क्या है भाई लाओ मैं पढ़ के दिखा दूँ, लाओ तो सही क्या है ये देखा। तो उन्होंने देखा कि ये हमारे गांव में बारिश अच्छी हुई है, फसल अच्छी निकली है, हमारा मिलिंद भाई को नमस्कार, हमारा अश्विन भाई को नमस्कार, वीरेश भाई को नमस्कार, सौभाग्यमल जी को नमस्कार, जो गांव के सारे नाम थे सबको नमस्कार। अभी देखो कैसा बराबर पड़ा, इसको कोई आता नहीं है, वो थोड़ू लख्यू घणु जानजो यानी वास्तव में तो आशय दूसरा है और मैं जो बता रहा हूँ वो बात जुदी है, लेकिन वो जानते थे कौन इनके पिताजी कि थोड़ू लख्यू सबको कुछ करने का तो सबका नाम लेने का। तो हम तो पहले किसी का खत आया तो मेरा नाम लिखा है ना, हाँ बहुत अच्छा भाई दिनेश को आशीर्वाद, अरे वाह वाह, और अपना ही नाम लिखे देखो हमको भूल गए, बस तीन दिन हो गए यहाँ से गई भूल गए, ऐसा कर दे ये बिल्कुल। हाँ बोलो। अच्छा तो यहाँ कह रहे हैं कि न्यायिक स्वभाव जो है वह चैतन्य जो वस्तु है उसको पहले जानो, और उसको जानना इसका ही अर्थ क्या हो गया कि हमने इतना ही बताया कि उसको जानो, तो उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए वह बात छह ढाला में बताई है कि लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ। ये हमारी जो प्रकृति है कहो या तबीयत है उसको ठिकाने पे लाने के लिए बात कह रहे हैं। दौलत राम जी कहते हैं कि लाख बात की बात यही है क्या कि आत्मा ने जानो, ये लिखा ना थोड़ू लख्यू, तो क्या कहते हैं लाख बात की बात यही निश्चय उरलावो तोरी सकल जग दंद फंद नित आत्म ध्याओ। ये जगत का जो दंद फंद है यानी जो कोई अभी सब समझ लेना दंद फंद, यानी अभी हम कुछ विशेष बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, ये जगत के सब तुम्हारी जो कोई होशियारी है कि इसको आज ये करना चाहिए उसको वो करना चाहिए, सब ये जगत का धंध फंद है, ख्याल में आए। तो वहां तो उसने ऐसा अर्थ किया है कि पांच पाप और सात व्यसन ये जगत का धंध फंद है, खराब में खराब बात, और बाकी तो मैं इसका मेरे को ये करने का है उसका वो करने का है, इसका थोड़ा मदद करो उसकी थोड़ी मदद करो। तो लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ तोरी सकल जग दंद फंद, क्या करना साहब फिर नित यानी कभी थोड़ा पांच मिनट टाइम नहीं, नित आत्म ध्यावो यानी आत्मा का ही ध्यान करो, ख्याल में यही एक बात है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि वो आचार्य आगे लिखेंगे आई कथम अपि मृत्वा यानी मर कर भी आप आत्मा का अनुभव करो। अरे भाई मरने के बाद क्या चाहे, अरे पागल मर कर भी इसका अर्थ है दुनिया में सभी चीज को गौण करके उस आत्मा को ध्याने में अगर तेरे को मौत भी आवे तब भी बेहतर है, लेकिन तू अपने आत्मा को जान पहचान और उसका अनुभव कर। तो ये थोड़ू लख्यू घणु जान जो, ख्याल में आया। हमें तो ऐसे ही लगता है अरे अभी तो आज के दिन ये जरा थोड़ा सा बड़ा अपना टेंडर पास होने दो, या ये कोई मार्केट में ये आया है तो उसका काम कर डालूं फिर कल से तो ये चालू ही रखने का है ना। अरे ये क्या ड्यूटी बजाने का है क्या इधर आके, ख्याल में आने भाई हमें वास्तव में ये ऐसा ये जीव का मन है ना, मन कैसा है, मरकट जैसा है। मरकट समझते हैं, माकड़, माकड़ भी नहीं समझते। माकड़ तो बेड़ में आता है, वो नहीं, मंकी, वांदरो, वांदरो। तो उसको कहीं ना कहीं बिजी रखने के लिए हमें तो शास्त्र स्वाध्याय करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम उठपटांग बातें तो दुनिया में बहुत होती है, उसमें क्या है। तो वहां से अपना दृष्टि हटकर बार बार हम आत्मा के बारे में सुनेंगे तो कभी ना कभी ये जैसा रबड़ी बॉल होता है ना, वैसा मारते बैठे जरा जरा एकदम जोर से मारो तो टांग उड़ जाएगा, वैसा हम ऐसा जोर करें कभी कि बस अपने आत्मा में उतर जाए। लेकिन उसके लिए उसकी प्रैक्टिस चाहिए। आज ही हमको किसी ने एक डोज दिया कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो काय की प्रैक्टिस करनी है, ये रास्ता क्रॉस करने की। चलो जाने दो। देखो यहां पर क्या बताते, देखो लाख बात करी, अनंत बात करी, पर बात ए छे के निज आत्मानु ध्यान करो, एटले पर्यायमा एने जाणो। एम कहीने एम सिद्ध करियु के रागनी मंदता थी आत्मानु ज्ञान थाय, एम कोई कहता होय तो ए वस्तु स्थिति नथी, यानी ये सही बात नहीं है, क्योंकि राग से वितरागता हाथ में नहीं आती। इसलिए कहते हैं हमणा बहु चाले छे के पहला व्यवहार रूप दया दान इत्यादि रागनी मंदता करिए, पहलू चारित्र केटलुक थाय पछीज समकित थाय। अरे भगवान, चारित्र समकित विना कदी थतु नथी। वड़ी कोई एक जने तो आम कहूं के सातमु गुणस्थान आव्या विना निश्चय समकित थाय नहीं, पन एम नथी भाई। आ तो मोक्षार्थी जेने मोक्ष करवो छे एने पहला जाने, स्व संवेदन ज्ञान थी प्रथम आत्मा ने जाणवो, पछी तेनुज श्रद्धान करवू। एम कयुं छे ने रत्नकरण शावकाचार में, एम आवे छे के सम्यक दर्शन करो अने पछी ज्ञान नु आराधन करवू, एटले के राग द्वेष टाळवा माटे चारित्र ग्रहण करवू, आराधन करवू एटले विशेष मग्नता करवी। आई सम्यक दर्शन थता ज्ञान साथे ज होय छे एम कहियुं छे। तत्वार सूत्र मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तथा छ ढाळा मा चौथी छ ढाळा मा एटले चौथी ढाळ मा सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, ए प्रमाणे लीधु छे। दर्शन नी पूर्णता पहली थाय छे एटले त्या दर्शन ने पहलू लीधु। ये क्या समझाया, ये देखो ये यहाँ ये बताते हैं। अभी यहां मैं आपको बताता हूं, यहां तीन बातों से हमें कंसर्न है, कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों ही एक समय में सम्यक रूप बनते हैं। आत्मा में अनंत गुण है ना, तो अनंत गुण एक गुण के बाद दूसरे गुण, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसा एक एक का एक के बाद एक एक के बाद परिणमन होता होगा कि नहीं, हा? कैसा होता है, सब अनंत गुणों का एक एक समय में अपना अपना परिणमन हो रहा है। तो यहां जब हम सम्यक रूप से परिणमित होता है ऐसा कहते हैं, जिसको श्रीमद जी ने भी कहा था सर्व गुणांशते सम्यक्त्व, यानी जब ये तीन गुण की जब हम बात करते हैं तो वहां तो दैट थ्री, वो तीन गुण सारे गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पहले तो हमें इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। अभी हम जीव द्रव्य की बात करते हैं, उस अनंत गुणों में अनंत गुण तो सम्यक रूप से परिणमित होते हैं और अनंत गुण विभाव रूप से परिणमित हो रहे हैं। अब जो विभाव रूप से परिणमित होने वाले जो कोई अनंत है, वो अनंतों में यहां तीन की बात की है, सम्यक दर्शन, दर्शन ज्ञान और चारित्र। तो ये तीनों गुणों का परिणमन एक साथ सम्यक होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले श्रद्धा पक्की हो जाए, अभी सम्यक श्रद्धांत हुआ, अभी सम्यक ज्ञान भी हुआ और अभी सम्यक चारित्र हुआ, ऐसा तीनों का समय भेद नहीं है। तीनों एक ही समय में सम्यक होते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं देखो, कहाँ गया हाँ, ये प्रमाण दर्शन नी, ये नीचे से थर्ड लाइन, ये आखिरी पेज में नीचे से तीसरी लाइन, दर्शन नी पूर्णता पहली थाय छे एटले त्या दर्शन ने पहलू लीधू छे। अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा जब हम कहते हैं तो पहले दर्शन गुण का नाम क्यों लिया? पहले चारित्र का लेना था ना सम्यक चारित्र, क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना है पहला चारित्र होता है बाद में सम्यक श्रद्धा होती है, या पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धा होती है। तो ये आपने ये जो तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताया तो उसमें सम्यक दर्शन का पहला नाम क्यों बताया? तो यहाँ क्या लिखते हैं, दर्शन नी पूर्णता पहली था, यानी हमारे पास तीन गुण है ना, तो क्षायिक सम्यक दर्शन यानी दर्शन गुण की परिपूर्ण स्वभाव रूप परिणति कौन से गुण स्थान में होती है भाई, आपको जानते ना? क्षायिक सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में होता है? हाँ बोलो बोलो, आपका विषय है प्रेरणा बेन, आप बोलती हैं जोर से जोर से, हाँ तो उसमें इतना क्या सोचने का, तुम्हारे पास तो है क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होता है, आपको कोई उदाहरण मालूम है सब? भरत चक्रवर्ती, हाँ शाबाश, भरत चक्रवर्ती भी था उसमें, चिंता नहीं करो, मैंने कहा ना बोला, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। सुनो सुनो, पहले तो ये समझ लो कि ये तो 100% है ना कि आज के तारीख में श्रेणिक राजा का जो जीव है वो नरक में है और वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और नरक में चौथे गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान ही नहीं होता है, इतनी तो गारंटी है ना। अब आगे तो पहले में पहले दर्शन गुण का जो सम्यक रूप परिणमन है परमानेंट, पहला मां पहलू पाकू परमानेंट जे एनु स्वभाव परिणमन छे, चौथा गुण स्थाने थाय छे। अब ज्ञान गुण का एकदम डायरेक्ट जिसको हम कहेंगे पूर्ण ज्ञान गुण की शुद्धता जो है वो कौन से गुण स्थान में होती है? हाँ जी, तेरहवें गुण स्थान में सर्वज्ञता प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है वो कर्णानियोग की अपेक्षा कभी होता है बहन? चौदहवें गुणस्थान में, क्यों चौदहवें गुणस्थान में क्या कहा है? चौदहवें गुणस्थान का नाम क्या है बहन? अयोग केवली। अब ये योग जिसके नहीं है, तो पहले हमने तत्वार सूत्र में ये भी पढ़ा था कि ये बंध के हेतु कौन कौन से हैं, आप जानते हैं पिनांग भाई बंध के हेतु? हाँ कोई बात नहीं, आपको याद आएगा, आप भूल गए, हाँ बोलो, हाँ ठहरो, हाँ मिथ्यात्व, देखो ऐसा जरा गाड़ी को, अब बारिश चल रहा है तो बारिश में गाड़ी डाउन हो जाती है, थोड़ा धक्का मारे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इसके कारण बंध होता था, यानी ये आश्रव के कारण, आश्रव है ना ये सारे, तो ये कह रहे हैं कि इसके कारण बंध होता था, अभी वो सब निकल गए, अभी ये अयोग केवली हो गया, तो वहां चारित्र गुण की परिपूर्णता बताइए। वैसे हम द्रव्यानुयोग में 12वें गुण, 11वें गुण स्थान से लेते हैं, 11वें में, 12वें में कहो, 11 भी हटा दो कि यथा क्या चारित्र होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वहां अभी योग का कंपन चालू है, ख्याल में, सहयोगी को है, 12वें की क्या बात है, इस अपेक्षा से यह क्रम लिया है। यहां क्या बता रहे देखो अभी, नीचे से तीसरे, दर्शन नी पूर्णता पहली थाई छे एटले त्या दर्शन ने पहलू लीधू, ये अभी ख्याल में, ये वाक्य क्यों डाला, नहीं तो ऐसे हम पढ़ जाएंगे तो मजा नहीं आएगी। आई ज्ञान नी बात उपाड़ी ने तेने पहला केम कहूं, कि अभी यहां कहते फिर दर्शन का तो पहला नाम लिया था, फिर आप हमेशा पहला मां पहला आत्मा ने जानवो, आज थोड़ू घणू लख्यू का जो थोड़ू लख्यू घणू आज जो, ये सारे ये ज्ञानने की क्यों बात कर रहे हैं आप? तो यहां कहते हैं आई अज्ञान थी बात उपाड़ी ने, यानी तोरी सकल जी, ये बताए ना नित आत्म को जानो, तो ये कहते ऐसा जो आपने लिखा તો કહેતી કે જ્ઞાનથી વાત ઉપાડીને તેને પહેલું કેમ કહ્યું કે પહેલા જાણ્યા વિના પ્રતીતિ એટલે શ્રદ્ધા કોની, યાને જબ તક હમારે જ્ઞાન સહી નહીં હોગા તો ઉસકી શ્રદ્ધા ભી કૈસે કરેંગે, ઓર જો હમારે કો અપને જ્ઞાન નહીં હૈ ઓર હમ ઉસકી શ્રદ્ધા કરેંગે શરીર રૂપ મેં હું તો કબ જ્ઞાન કબ આત્માનુભવ હોગા, તો બરાબર સહી રૂપ સે જાનના પડેગા કે નહીં, હા કે સ્વ કો સ્વ રીતિ સે ઓર પર કો પર રૂપ સે હમે જાનના પડેગા, જાનેગા તો સ્વ કા શ્રદ્ધાન હોગા, ઇસલિયે કહેતે હૈ કે પહેલા જાણ્યા વિના પ્રતીતિ એટલે શ્રદ્ધા કોણી, જે વસ્તુ જ્ઞાનમાં જણાઈ નથી એની પ્રતીતિ શાણી. બહુ બઢિયા. આ પૂર્ણાનંદ અતિન્દ્રિય આનંદ કંદ સચ્ચિદાનંદ પરમ સ્વભાવ રૂપ આત્મા છે તે જ હું છું એમ શ્રદ્ધા કરવી, તો એ શ્રદ્ધા કરને કે લીએ મેં પૂર્ણ આનંદ અતિન્દ્રિય આનંદ કંદ એસા મેરા સ્વભાવ હૈ, સત યાને જો ત્રિકાલ સત સત્તા સ્વરૂપ હૈ, ચિદ યાને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા યાને જ્ઞાન દર્શન મેં ઓર આનંદ મેં એસા સચ્ચિદાનંદ આનંદ સ્વરૂપ પરમ સ્વભાવ રૂપ મેં હું, એસા જબ ઉસકો શ્રદ્ધા હોગી કબ હોગી કે જબ જાનેગા તબ હોગી ના, નહીં તો અરે મેં તો ભાઈ અરે ક્યાં કુછ યાદ નહીં રહેતા હૈ મેરા તો જ્ઞાન એસા ફાલતુ હૈ ના, મેં સબ બાત ભૂલ જાતા હું, કલ ક્યાં સિખાય વો આજ ભૂલ જાતા હું, એસા આપને કો તું હિન દિન માનેગા તો ક્યાં તુઝે સહી આત્મા કા અનુભવ હોગા, તો કહેતે ભલે પર્યાય મેં તુઝે કોઈ ભી હીનતા યા પ્રગલ્ભતા હોવે તબ ભી વહ પરિપૂર્ણ એસા જો તેરા સ્વભાવ હૈ વહ તું કાયમ એસા હી હૈ એસા ન માનકર પર્યાય કે તરફ ધ્યાન દેગા તો તુઝે આત્મા કા અનુભવ નહીં હોગા, ઇસલિયે કહેતે પૂર્ણ આનંદ અતિન્દ્રિય આનંદ કંદ સચ્ચિદાનંદ પરમ સ્વભાવ રૂપ આત્મા છે તે જ હું છું એમ શ્રદ્ધા કરવી. ખ્યાલ મેં આયા એની શ્રદ્ધામાં એમ આવ્યું કે આ અંદર જે પ્રત્યક્ષ જણાયો એ જ આત્મા છે અને તેનું આચરણ કરવાથી એટલે કે તેમાં એકાગ્ર થવાથી અવશ્ય કર્મોથી છૂટી શકાશે. શું કહ્યું જુઓ, તેનું આચરણ કરવાથી, વો ક્યાં કર રહે, વો રાજા કા અનુચરણ કર રહે ને, રાજા કો સેવન કર રહે ને, તો યહાં કહે રહે કે જોયો જુઓ તેનું આચરણ કરવાથી એટલે કે જે ન્યાયક ભાવ સ્વભાવ ભાવ જ્ઞાનની પર્યાયમાં પ્રત્યક્ષ જણાયો અને જેની શ્રદ્ધા થઈ કે આ જ આત્મા છે એમાં આચરણ કરીશ તો કર્મોથી છૂટાશે, બીજી કોઈ ક્રિયા તો છે નહીં, બહારના ક્રિયાકાંડ વ્રત અને તપ કરીશ તો કર્મોથી છૂટાશે એમ એની શ્રદ્ધામાં નથી આવતું. ઘણું ગંભીર ભર્યું છે ભાઈ. એક તો એ કે જ્ઞાન આત્માને સીધો જાણવો બસ, એટલે કે વ્યવહાર આવો હોય તો જણાય એ વાત કાઢી નાખી. બીજું એ કે આ આત્મા છે એમ જાણ્યું તેથી એની શ્રદ્ધામાં એમ આવ્યું કે આત્મામાં ઠરીશ ત્યારે કર્મ છૂટશે, પણ આટલા ઉપવાસ કરવાથી કર્મ છૂટશે એમ નહીં. ત્યાં પ્રશ્ન થાય કે શાસ્ત્રમાં તત્વાર સૂત્રમાં આવે છે કે તપસહ નિર્જરા, ઉત્તર એમ છે કે એ તો નિમિત્તના કથન છે, માર્ગ તો આવો છે ભાઈ. બાકી વાત કર લેંગે ક્યુકે અભી રાત કો 84 અવતાર મેં ઘુમાયંગે. તો જાવાણી કે જ્ઞાન સે સૂજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકણમો સદા દેતો.